नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि नीट के बारे में, NEET, शॉर्ट में से नीट कहा जाता है। तो तमिलनाडु के लोगों के द्वारा, तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा इस एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक हाल ही में बिल भी पास किया है जो कि तमिलनाडु को नीट परीक्षा से एक्सक्लूड, मतलब नीट परीक्षा से तमिलनाडु के बच्चों को बाहर रखने की बात करता है। तो उसी पर हम आज की चर्चा करेंगे कि क्यों तमिलनाडु इस पक्ष में है कि वो नीट एग्ज़ाम्स में, वहाँ के जो तमिलनाडु के बच्चे हैं नीट एग्ज़ाम्स में नहीं आने चाहिए, इनके लिए सेपरेट कोई अलग सिस्टम होना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु और नीट, ये पूरा क्या इशू है, क्यों तमिलनाडु में नीट परीक्षा का विरोध देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि नीट ये वह परीक्षा है, NEET ये वह परीक्षा है जिससे बच्चों का एडमिशन MBBS कॉलेजेस के लिए में होता है। जैसे बहुत से अलग अलग इंजीनियरिंग के लिए आपने सुना होगा GE होती है, लॉ के लिए क्लैट होती है और दूसरी स्टेट्स की CET होती है, वैसे ही मेडिकल कॉलेज में अगर आपको दाखिला लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ती है। उसमें जिस आधार पर आपको नंबर आते हैं उसी आधार पर आपको कॉलेजेस मिलते हैं मेडिकल के। तो यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है मेडिकल का, उस हेतु नीट एग्ज़ाम है। अब नीट एग्ज़ाम जो है ये सारे ऑल इंडिया लेवल के लिए है, सारे देश के लिए एक एग्ज़ाम है। पहले क्या होता था कि हर स्टेट की अपनी अलग प्री मेडिकल टेस्ट होती थी, एक ऑल इंडिया PMT भी होती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, लेकिन उसके बाद में सरकार ने कदम उठाया कि हम पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म टेस्ट लेकर आएंगे जिसका नाम नीट रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने नीट को सही ठहराया। तो यहाँ पर बात ये है कि इस नीट एग्ज़ाम के अगेंस्ट तमिलनाडु में एक बिल पास किया गया। ये बिल पास किया गया, ये बिल ये कहता था कि जो तमिलनाडु के बच्चे हैं उन्हें नीट से, तमिलनाडु जो कंप्लीट स्टेट है इसे नीट से एक्सक्लूड कर दिया जाए और तमिलनाडु में जो मेडिकल कॉलेजेस है इसमें जो सीटें भरेंगी इसके लिए अलग मैकेनिज्म हो, या तो 12th क्लास के मेरिट के आधार पे लिया जाए या उसके लिए कोई अलग सी दूसरी एग्ज़ाम हो, लेकिन नीट नहीं हो। अब ये बिल पास किया गया, मामला कॉन्करेंट लिस्ट का था, संवर्ती सूची का था, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की सहमति ज़रूरी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने इस बिल पे सहमति नहीं देते हुए ये बिल वापस तमिलनाडु के लेजिस्लेशन को, तमिलनाडु की विधानसभा को वापस भेज दिया है। अब ये बिल किस आधार पर बना, तो उसका आधार बनाया है एक कमिटी रिपोर्ट को, एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट को जो कि हेड की जा रही थी जस्टिस AK Ranjan के द्वारा। जस्टिस AK Ranjan मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है। तो इनकी एडवाइस पे गवर्नमेंट का ये बोलना है कि वो नीट से अपने आप को इस कारण से एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब बात ये है कि जब इस कमेटी से क्वेश्चन किया गया, इस कमेटी के अगेंस्ट कुछ लोग, इन्होंने PIL डाली कि ये कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट की गई है क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाता है जिसने नीट को सही ठहराया है। तो कमेटी का ये बोलना था कि वो यह रिसर्च कर रहे हैं, वो ये पता लगा रहे हैं कि नीट के बारे में तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या ओपिनियन है और उन पर क्या प्रभाव है, जो लोग इसको पसंद करते हैं और इनकी सामान्यतः क्या राय है इस बारे में, इसलिए हम यह काम कर रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं। तो कमेटी का ये जवाब आया जब इनके अगेंस्ट PIL गई थी। अब कमेटी के, वहाँ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ये बोलती है कि कमेटी की रिकमेंडेशन और उनके रिकमेंडेशन और उनने जो सर्च किया, जो तथ्य सामने आए उसके आधार पे हमने ये बिल लेकर आए हैं। अब बात ये है कि कमेटी का क्या बोलना था, कमेटी ने इसमें यह ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करा था कि कोई कानून नया या लेजिस्लेशन लाया जाए, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम हैड नॉट प्रोवाइड एनी स्पेशल पर्पस और मैकेनिज्म टू द जज द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इस कमेटी ने पता लगाई वो ये है कि स्टूडेंट का नॉलेज या एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए ये परीक्षा पर्याप्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फाइंडिंग था इस कमेटी का, जो कि महत्वपूर्ण तथ्यों से जोड़ती है बातों को। उसके अलावा नीट गोस अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स एज कोचिंग एंड सेंटर्स आर ऑफ फॉर एफ्यूलेंट स्टूडेंट्स। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं, अगर हम JEE की बात करें, अगर हम लॉ की एंट्रेंस क्लैट की बात करें और दूसरी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें, MBA के एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स की बात करें, CAT की, तो इनका स्तर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे कारण ये है कि इतनी प्रतिस्पर्धा हमारे देश में पड़ गई है। अब इतनी प्रतिस्पर्धा है तो आपको अलग हट के कुछ करना पड़ेगा। इस अलग हट के कुछ मेहनत करवाने के लिए हमारे देश में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट सामने आ गए। अब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी। ये स्टूडेंट को इस तरीके से तैयार करते थे कि वो इन एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। अब प्रभाव ये बढ़ता है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट का भी बोलना ये है कि जो रूरल एरिया के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए स्कूलों में तो वो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कोचिंग में जाने का ना पैसा होता है ना उतना समय होता है, क्योंकि इन पे घर की जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे काम करते करते पढ़ाई करते हैं, तो वो नीट जैसे एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब इसी को देखते हुए तमिलनाडु में ये इशू इतना ज़्यादा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि तमिलनाडु में नीट परीक्षा के रिज़ल्ट को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, क्योंकि नीट परीक्षा को वो क्रैक ना कर सके। अभी हाल ही में एक उदाहरण ये मिला है कि नीट परीक्षा के 3 दिन पहले एक तमिलनाडु में 19 वर्षीय बच्चे ने यहाँ पर सुसाइड कमिट करी। तो तमिलनाडु में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है क्योंकि जो बहुत होशियार बच्चे हैं, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, थ्रू आउट उनका स्कूलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन नीट की परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाते, इस कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए तमिलनाडु में ये मुद्दा बन गया कि क्या नीट की परीक्षा अपने आप में सही है या नहीं है। तो इसी को देखते हुए अब मुद्दा ये आता है कि क्या तमिलनाडु इस बारे में कानून बना सकती है। तो मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन है ये विषय संवर्ती सूची में आता है, मतलब जिस पर स्टेट और सेंटर, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। तो यहाँ पर नीट परीक्षा जो बनी गई है ये तो सेंट्रल का कदम, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल से आता हुआ कदम है, वही स्टेट गवर्नमेंट इसका विरोध कर रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बातें देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बताया है कि नीट यूजी और पीजी मेडिकल कोर्सेज के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आती है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के सेक्शन 10D से। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है वो हमारे देश में किस तरीके से बहुत सारे मुद्दों पे बात करता है, लेकिन किस तरीके से यूजी और पीजी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होगा इसके लिए भी यही एक्ट से हमें पता चलता है, खासकर सेक्शन 10D इसके बारे में बताता है। अब बात ये कही गई है कि तमिलनाडु के अलावा कोई भी स्टेट इसके विरोध में इस तरीके से नहीं आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है और उसी स्टैंडर्ड को इन्होंने नीट की परीक्षा माना है। उसके अलावा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक और कदम उठाने की कोशिश की थी कि जो बच्चे तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड से पास है उनको तमिलनाडु के कॉलेजेस में 85% रिजर्वेशन और जो अदर बोर्ड से पढ़े हुए उनको 15% रिजर्वेशन। लेकिन जब ये मुद्दा मद्रास हाई कोर्ट में गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसे गलत माना और ये जो रिजर्वेशन जो सिस्टम था ये स्क्रैप करने की बात कही। तो अब महत्वपूर्ण बात ये पड़ती है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ये सेंट्रल लिस्ट का एंट्री 66 का पार्ट है, तो क्या इसमें स्टेट कोई रेगुलेशन या कोई स्टैचू ला सकता है, कोई नियम, कोई कानून बना सकता है सेंट्रल लिस्ट के मुद्दे के ऊपर? ये एक अंतिम प्रश्न पे इस आर्टिकल में हमको यहाँ पर राइटर ने इस क्वेश्चन के साथ में छोड़ा है। तो चलिए आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये समाज के जो उच्च वर्गीय तबके हैं केवल उन तक ही सीमित है, ये तो सत्यता है। ग्रामीण क्षेत्र और जो सरकारी स्कूलों में जो अपनी वर्नाकुलर मीडियम में बच्चे पढ़े हुए हैं, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़े लिए हुए हैं, उनके लिए नीट परीक्षा या इसकी ही जैसी जो दूसरी परीक्षा, ये अपने आप में काफ़ी कठिन होता है। तो क्या सरकारें, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्या वो मिलकर इस बारे में विचार करेंगे और क्या इसका कुछ और अल्टरनेटिव निकल आ पाएगा जिससे बच्चों का नॉलेज और एप्टीट्यूड, जो एक स्टैंडर्ड की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही गई है, वो स्टैंडर्ड क्या और किसी माध्यम से और किसी मैकेनिज्म से भी जांचा जा सकता है, उसके बारे में क्या हमारी सरकारें विचार करेंगी, क्या हमारी सिविल सोसाइटी कुछ सजेस्ट करेंगी, ये हम आगे आने वाले समय में ही देख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम हमारा डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। इसके अलावा आप हमें ऑडियो फॉर्म में हमारे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण दिलचस्प अपडेट्स मिलेंगी। उसके अलावा इंस्टाग्राम पेजेस पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लॉ फाइनेंस में दिलचस्पी लेते हैं तो उसके लिए लॉ सीखो का नया इंस्टाग्राम पेज लॉ सीखो लॉ फाइनेंस भी लॉन्च हो गया, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलेंगी। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट आप विजिट कर ही सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।